ओम शांति। राजयोग के दो मूल आधारभूत सत्यों को आपने समझ लिए हैं। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, और जिससे योग लगाना है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा है। ये दोनों ही सत्र ध्यान पूर्वक आपने अटेंड किए होंगे, तो मन भटकने के जो दो मूल कारण हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्रथम लेसन से एक कारण स्पष्ट हुआ कि मन भटकने का मूल कारण देह अभिमान है। जब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, शरीर भान में आने लगते हैं, जिस देह अभिमान के कारण ही मन भटकता है। हम कह सकते हैं कि देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, और उसके लिए सिंपल अभ्यास है। अब तक हम देह भान मिटाने के लिए इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त रहने के लिए देह दमन की हठ क्रियाएं करते रहे। कोई आंख बंद करके बैठते हैं, कई मौन कर लेते हैं, उपवास करते हैं, कई देह को कष्ट देने वाले हठयोग की क्रियाएं करते हैं कि देह भान मिट जाए। लेकिन राजयोग में देह भान मिटाने की, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज कर सोल कॉन्शियस बनने की बहुत सहज विधि है, और वो है खुद को आत्मा समझना, अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलने के कारण हम देह भान में आए। इसलिए प्रथम लेसन से तीन अभ्यास रोज की दिनचर्या में बार बार आप करते रहेंगे तो बहुत जल्दी सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। पहला अभ्यास आत्मस्मृति में रहना, उठते बैठते चलते फिरते हर कर्म करते हुए मन ही मन ये अवेयरनेस रखना कि मैं आत्मा हूं। एक चैतन्य शक्ति शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा अभ्यास, हरे को आत्म दृष्टि से देखना। आप जिसको भी देखें, जिससे भी मिलें, बातचीत करें, उनके मस्तक में देखें, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। उस आत्म दृष्टि से देखना है, देह नजर से नहीं। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, ये गलत स्मृति है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी कहा जाता है। मैं आत्मा शक्ति हूं। हमें एक दो को रूहानी दृष्टि से देखना है, देह भाव से नहीं देखना। और तीसरा अभ्यास है, सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म आप करते हैं, आत्म धर्म में स्थित होकर करें। और अब आप सबको पता है कि हरेक आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। हरेक आत्मा के निजी गुणधर्म, उनके असली गुणधर्म शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता है। हमें इन गुणधर्मों में स्थित होकर हर कर्म करना है। अगर ये तीन अभ्यास, अटेंशन हम रखेंगे तो बहुत जल्दी हम सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। और जैसे ही आप सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, मन अंतर्मुखी बनता जाएगा, आप स्वयं के आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित होते जाएंगे और आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं के पिता है, शरीर के पिता नहीं। परमात्मा को याद करने वाली हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। इसलिए एक सिंपल बात आप समझ लें कि आप बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो देह से संबंधित व्यक्ति वैभव प्रवृत्ति संसार वही बातें याद आती रहेंगी। आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। और कल शाम को जो दूसरा सत्र हुआ, पिता परमात्मा का सही परिचय आप सबने प्राप्त किया। इससे मन अब तक जो भटकता था परमात्मा स्मृति में एकाग्र नहीं होता था, उसका दूसरा मूल कारण आपको समझ में आ गया होगा कि जिस परमात्मा से हम मन बुद्धि लगाना चाहते हैं, हम उस परमात्मा को ही नहीं जानते थे, उनका ही सही परिचय नहीं था। अब आपको स्पष्ट है कि परमात्मा एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, कल्याणकारी शिव पिता, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर है, इटर्नल सोर्स है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है। कोई भी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कह सकता। हम मनुष्यात्माएं परमात्मा की याद से, योग तपस्या से महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बन सकते हैं, परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही, कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते। हमें स्पष्ट रहे, जो भी साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, गुरु विद्वान पंडित आचार्य संत महंत, हम उनको महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। जो भी धर्म स्थापक इस दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना का कार्य किया है, चाहे वो इस्लाम के अब्राहम हैं, यहूदियों के हजरत मूसा हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक जी हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं, अशोक जरथुस्ट हैं, ये धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा के मैसेंजर है, परमात्मा नहीं। और जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते रहे हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राधे कृष्ण है, श्री सीताराम है, श्री अम्बा दुर्गा सरस्वती हैं, श्री गणेश हनुमान महाकाली हैं, ये देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। इन सब के रचयिता परमात्मा एक निराकार ज्योति स्वरूप है, जिस परम ज्योति स्वरूप को सभी धर्म मान्य करते हैं। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना। तो देखिए, हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति है। न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है, न हम कोई प्राकृतिक शक्ति है, न परमात्मा कोई प्राकृतिक शक्ति है। तो अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से संबंध, संपर्क, मिलन। कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। चित्र में बताया है कि एक वक्ता का श्रोताओं से संपर्क, ध्वनि शक्ति, प्रकाश शक्ति के माध्यम से है। अगर यहां घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं, तो मेरे और आपके बीच जो कॉन्टेक्ट स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू साउंड एंड लाइट। हम एक दूसरे से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से कांटेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से संपर्क, मिलन, बातचीत, कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। ये मन और बुद्धि हम औरों से अटैच करके बैठे हैं और फिर परमात्मा मिलन के लिए शारीरिक, औपचारिक क्रियाएं करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं, जैसा कि योग के नाम पर अब तक हम आसन प्राणायाम की देह दमन की शारीरिक क्रियाएं करते रहे हैं, राजयोग में कोई आसन प्राणायाम नहीं करने। बेशक आप फिजिकल हेल्थ के लिए आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो शरीर के लिए है, लेकिन जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, परमात्मा से मिलन मनाने की बात है, इसमें कोई शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। आप कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। सुखासन में बैठना है, जिस सहज स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हो। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं, बहनें, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां आप खुद अपने अनुभव को देखिए, आप कुर्सी पर आराम से बैठे, फिर भी एक घंटे के अंदर कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते, अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय शरीर से ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि भाई कब ये घंटा पूरा हो तो ये आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही आप बॉडी कॉन्शियस बन जाएंगे, क्योंकि हमें रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं है। अब ये शरीर भी ऐसे हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते, इसलिए हम कहते हैं फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। लेकिन जब भी आप योग अभ्यास करने बैठें, मेंटली अटेंटिव होकर के बैठना है, मन से अटेंटिव होकर बैठना। अगर मन से भी आराम से बैठे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मन से भी आप आराम से बैठेंगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी। देखो आसपास कोई नींद तो नहीं कर रहा है, तो फिजिकली रिलैक्स, पर मेंटली अटेंटिव होकर बैठना है। क्या अटेंशन रखना है कि ये एक घंटा या आधा घंटा, ये दो घंटा मैं परमात्मा स्मृति के लिए बैठा हूं, ये दो घंटा प्रभु चिंतन के लिए है, परमात्मा मिलन के लिए मैं बैठा हूं, अभी और बातें मुझे नहीं सोचनी है। अपने आप को समझाइए, जीवन की अन्य अनेक बातों को सोचने के लिए, फिर वो घर गृहस्थी की बातें हैं, नौकरी धंधे की बातें हैं, समाज संसार की बातें हैं, शरीर की, परिवार की बातें हैं, ये सब सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। आप लक्ष्य बनाइए कि प्रतिदिन एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम परमात्मा चिंतन के लिए, प्रभु मिलन के लिए। उस समय और बातें नहीं सोचनी। इस प्रकार बार बार फिर से अटेंटिव होकर बैठना। हो सकता है आप में से कई, चूंकि आजकल हर कोई फिजिकल योग अभ्यास करने लगे हैं, कोई पद्मासन लगाकर, कोई अर्ध पद्मासन लगाकर, कोई वज्रासन लगाकर, घंटा दो घंटा सहज बैठ सकते हैं। पर आप खुद सोचिए कि शरीर से आसन लगाकर हम स्थिर बैठ गए, पर मन परमात्मा में आसन्न नहीं हुआ, मन परमात्मा स्मृति में मग्न नहीं हुआ, केवल शरीर से स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा? हमें तो मन परमात्मा में मग्न करना है ना, मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करना है, शरीर से केवल स्थिर नहीं बैठना है ना। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि मन परमात्मा में आसन्न करना है, न कि शरीर को केवल आसन लगाना। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी यही आदेश दिया हुआ है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मई बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। मन बुद्धि परमात्मा में लगाने के बजाय हम शरीर से आसन लगाते रहते हैं। इस इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, हमें अपनी सहज स्थिति में बैठना है। अब योग अभ्यास में क्या करना है? लोग सोचते हैं कि भक्ति में परमात्मा की याद में एकाग्र होने के लिए हम माला फेरते रहे हैं, मंत्र रटते रहे हैं, या मुख से कुछ न कुछ आरती भजन गाते रहे हैं, तो राजयोग में क्या करना है? राजयोग में कोई माला नहीं फेरनी है, ना ही कोई मंत्र रटना है, क्योंकि रटना जपना औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? महेश भाई, हाँ, हम ऐसे नाम से रटते हैं? हाँ, नहीं। हम अपने मित्र संबंधियों को स्वाभाविक याद करते हैं, हम उनकी स्मृति में रहते हैं, हम उनके चिंतन में रहते हैं, केवल उसका नाम रटते नहीं रहते। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ऐसी औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं, जबकि हमें भक्ति में अनुभव है, हम माला फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता है। है अनुभव, मन भी फिरता रहता है, क्योंकि जो क्रियाएं औपचारिक है, आर्टिफिशियल है, रटना जपना, मन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, इसलिए भटकना शुरू कर देता है। इवन हमारे भक्ति में ज्ञानी भक्तों ने भी स्पष्ट कहा है, कबीर जी ने स्पष्ट कहा है, माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल रे। उन्होंने खुद ये सजेस्ट किया है, हाथ के मन के छोड़कर मन का फेर। ये मन रूपी मणके को फेरने की बात है, स्थिति बदलने की बात है। सिर्फ हाथ से मन के फेरने की बात नहीं, परमात्मा से योग लगाना है तो मनोस्थिति को अंतर्मुखी बनाने की जरूरत है। जो मन बहिर्मुखी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है, संसाराभिमुख हो गया है, हमें पहले मन को अंतर्मुखी बनाने की जरूरत है, मन परमात्मा विमुख करने की जरूरत है। इसलिए प्रथम लेसन आत्मचिंतन का सिखाया गया। तो मनोस्थिति बदलना है, न कि सिर्फ मन के फेरने की बात है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है, यहां हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है, न कि सिर्फ मुख से या मन से मंत्र रिपीट करना है। कई बार हम देखते हैं लोग मंत्र रटते हैं, उसके अर्थ को भी नहीं समझते। हमें मंत्र के अर्थ को समझकर उसे आचरण में लाना। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं है। हमें योग में कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटना नहीं है। हमें ओम शांति सिर्फ मुख से कहने की बात नहीं। कोई ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं। यहां हमें ओम शांति बनना है। हमें अपनी शांत आत्मा स्थिति बनानी। इसलिए सबसे उत्तम ये है जो ईश्वर के प्रेम मंत्र में मुग्ध है, उसे शब्द मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमात्मा से प्यार कम हो गया, हम उनकी याद स्मृति में नहीं रह पाए, तो हमने ये विभिन्न प्रयास शुरू किए कि चलो मंत्र रटते हैं, माला फेरते हैं, मन एकाग्र होता है। ये हमारे विभिन्न प्रयास थे, पर सही बात यही है कि हमें रटने जपने की या मुख से गाना बजाना आवाज करने की भी जरूरत नहीं है। हम भक्ति में मुख से आरती गाते हैं, भजन गाते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से रात दिन हम भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, आवाज करते हैं। राजयोग में आवाज नहीं करना है, क्योंकि सही बात ये है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। वो इस आवाज की दुनिया से दूर कहां रहते हैं? हाँ, शांति की दुनिया में रहते हैं। ये टॉकी वर्ल्ड है। यहां हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते हैं। जिसको परम धाम शांति धाम कहा जाता है, वहां ये मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? हाँ, अंतर का आवाज उनको पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता है। वो दिल का जिगरी प्यार परमात्मा से नहीं रहा, इसलिए हम मुख से गाने लगे, आवाज करने लगे, बजाने लगे। आरती शब्द ओरिजिनली आर्त वाणी है। अंतर की वाणी से परमात्मा को याद करना, इसलिए राजयोग के अभ्यास में हम साइलेंस में बैठते हैं। मन और बुद्धि से अंतर्मुखी बनकर अंतर मन के प्यार से पिता परमात्मा को याद करते हैं। अब दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग कहां लगाना, हम सामने क्या रखें, मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, हमें योग कहां लगाना है? क्या हम दीवा जलाएं, बिंदु पर मन लगाएं, हमें योग कहां लगाना? लेकिन अब मैं आप सबसे ही कहूंगी, अब आप खुद विवेक से सोच कर बताइए कि हमें योग कहां लगाना। अब आप भी सिर्फ भक्त आत्माएं नहीं है, अब आप भी ज्ञानी तो आत्माएं हैं। आप सभी ने अपने आप को जान लिया है, पिता परमात्मा को पहचान लिया है। अब आप खुद विवेक से बताइए कि हमें योग कहां लगाना है। हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र मूर्ति या फोटो से योग लगाना है। ये तो भक्ति में हम भगवान को जानते नहीं थे, हम भावना से भगवान को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हरेक ने अपनी श्रद्धा भावना जिसकी जिसमें रही, उनका चित्र फोटो सामने रखा। जैसे आपके पिताजी विदेश गए हों, तो आप उनके फोटोज आएंगे, वीडियोज आएंगे, वो देखकर खुश होंगे। लेकिन पिता स्वयं विदेश से सन्मुख आ जाए, फिर फोटो देखते रहेंगे या आए हुए पिता से सन्मुख मिलन मनाएंगे? क्या करेंगे? सन्मुख मिलन मनाएंगे ना। चलो, भक्ति में हम भगवान को खोजते थे, हम मानते थे, यथार्थ रूप से जानते नहीं थे, तो हमने मूर्ति चित्र फोटो का आधार लिया। लेकिन उसमें भी अनुभव क्या है? मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो भी मन घूमता ही रहता है। मन में दूसरी ही मूर्तें घूम रही। आखिर ये आधार कब तक हम लेंगे? आप सोचिए ना, क्या हम अपने प्रेमियों को, स्नेहियों को याद करने के लिए उनका फोटो चित्र सामने रखते हैं? रखते हैं? हाँ? नहीं। हम कहते हैं कि मुझे उनका फोटो चित्र सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं। जिसको मैंने जान लिया, पहचान लिया और अंतर मन में छाप लिया, उनके बाह्य फोटो की मुझे कोई जरूरत नहीं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हम ऐसा आधार कब तक लेते रहे? इसलिए अब राजयोग में आपको एक कदम आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपको परमात्मा का सही परिचय मिल चुका है। इसलिए जो अभ्यास मूर्ति चित्र के आधार से, क्रियाओं के आधार से करते थे, अब परमात्मा को याद करने का अभ्यास मन और बुद्धि से, सत्य ज्ञान की समझ से करना है। इसलिए राजयोग में कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार नहीं। यहां जो भी चित्र आप देख रहे हैं, इवन हमारे केंद्रों की मुलाकात आपने ली होगी, ज्ञान के अनेक चित्र लगे हुए होते हैं। यहां म्यूजियम में, आर्ट गैलरी में भी आपने देखा होगा। पर आपको ये स्पष्ट रहे कि ये जो भी चित्र हैं, वो ज्ञान समझाने के लिए। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना, ये ज्ञान समझाने के लिए। और ये तो आप मानते हैं ना कि घर में जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा ही चरित्र बनेगा, ये तो आप समझते हैं ना। घर में जैसे चित्र आप लगाएंगे, फिर वो अभिनेता का हो, क्रिकेटर का हो, कोई पशु का हो, कोई भी जैसा चित्र लगाएंगे वैसी ही प्रेरणा रोज हम लेते रहेंगे, तो वैसा ही चरित्र हमारा बनेगा। अगर ज्ञान के चित्र लगाएंगे तो ज्ञान बार बार बुद्धि में स्मृति में आता रहेगा। तो ये चित्र ज्ञान समझाने के लिए हैं, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना। तो राजयोग की सिंपल व्याख्या ये है कि परमात्मा जो है, जैसा है, जहां रहता है वहां मन बुद्धि लगाना, उसे योग कहते हैं। परमात्मा जो है क्या है, सारी महिमा आप जानते हैं, वो ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर, शांति दाता, दुख हरता, सुख करता, सदा पावन, पतित पावन, सर्वशक्तिमान, सर्व के सदगति दाता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, वो जो है और जैसा है। कैसा है, कैसा है, जैसी मैं आत्मा हूं, जैसी मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, परमात्मा भी परम ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जहां रहते हैं, कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, परम धाम, हमें मन बुद्धि से परम धाम निवासी परमात्मा से योग लगाना है। इसलिए राजयोग में हम शरीर से यहां बैठते हैं, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाते हैं, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को मन की आंख से देखते हैं और बुद्धि पूर्वक, समझ पूर्वक हम उनकी स्मृति में रहते हैं। इसलिए कोई चित्र मूर्ति फोटो का आधार नहीं, और वैसे भी परमात्मा तो भौतिक है ही नहीं ना, परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, वो कोई देखने की चीज नहीं है। परमात्मा को जानना है, पहचानना, ये विवेक की बात है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अभी इस हॉल में आप सूर्य नहीं देख रहे, पर जैसे ही सूर्य शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, हाँ, मन की आंख से देखा ना, ज्ञान नेत्र से विजुअलाइज किया, क्योंकि नॉलेज है। आप जानते हैं प्रकृति जगत का ये सूर्य आकाश में वो प्रकाशमान गोला है, जो हमें नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। मन की आंख से विजुअलाइज किया ना, परमात्मा तो भौतिक है ही नहीं, वो तो है ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, परम चैतन्य शक्ति। इसलिए मन की आंख से देखना है, विजुअलाइज करना है, उनकी याद और स्मृति में रहना है। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए, राजयोग में कोई साधन नहीं है, कोई क्रिया नहीं, ये बिल्कुल सहज योग है, ज्ञान योग है। हर कोई योगी बन सकता है। इसलिए परमात्मा का ये दिव्य संदेश हम सबको देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बन सकते हैं, लेकिन जब हम ये योगी जीवन बनाने की बात कहते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे योगी बन सकते हैं? क्योंकि अब तक जो योगी तपस्वी बने वो घर बार छोड़कर बने। तो भाई बहने सोचते हैं कि हम कैसे योगी बन सकते हैं, हम तो दुनिया नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन राजयोग हमें ये नहीं कहता है कि हमें दुनिया को छोड़ना है, हमें दुनिया को, जिम्मेवारियों को, संबंधों को, प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? हमें देहभान छोड़ने की आवश्यकता है, हमें बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करने की जरूरत है, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान मिटाने की आवश्यकता है। देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए योगी बनने के लिए कोई ड्रेस बदलने की, कोई स्थान बदलने की जरूरत नहीं। कई मेहमान हमें अक्सर ये कहकर जाते हैं कि बहन जी हमें भी आप यहां रख लो, यहां रहने से कोई योगी नहीं हो जाता। कोई स्थान बदलने की बात नहीं है, बेशक योगी को ऐसा शांत, स्वच्छ, पवित्र वातावरण अच्छा लगता है, पर कोई स्थान बदलने से योगी नहीं हो जाता। योगी जहां रहेगा उस स्थान को ही स्वच्छ, शांत, पवित्र बनाता है। कोई भगवा पहनने की या सफेद पहनने की आवश्यकता नहीं, कोई ड्रेस बदलने से आंतरिक दिल बदल नहीं जाते हैं। हमें व्रत प्रवृत्ति बदलनी है, प्रवृत्ति नहीं छोड़नी है। ये सफेद ड्रेस हमारी यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी की अपनी यूनिफॉर्म होती है ना? हमारी ये यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में रहते हैं, इसलिए हम फुल टाइम सफेद ड्रेस पहनते हैं। पर कोई सफेद पहन लेने से योगी नहीं हो जाता। बेशक योगी को सफेद ड्रेस अच्छा लगता है, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। तो राजयोग ड्रेस परिवर्तन नहीं, आंतरिक वृत्ति परिवर्तन के लिए कहता है, स्थान परिवर्तन नहीं, आत्म स्थिति परिवर्तन करना है। इसलिए इस योग अभ्यास में कोई बाह्याचार नहीं है, कोई पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कोई क्रियाकांड इसमें नहीं। राजयोग का ध्येय सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन करके खुश होने की बात नहीं। राजयोग का ध्येय पुजारी से पूज्य, विकारी से निर्विकारी बनना है। हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए इस योग अभ्यास में हमें भगवान को पुकारना नहीं। भक्ति में कोई भगवान को पुकारते, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, हे भगवान, ओ गॉड, अल्लाहु अकबर, चिल्लाना नहीं, पुकारना नहीं। बताया ना, परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता। इसलिए जोर जोर से पुकारना नहीं, आवाज नहीं करना। हमें भगवान से मांगना नहीं है। अक्सर लोग जब हम पूछते हैं, आप भगवान को याद करते हैं, तो अक्सर भाई बहने कहते हैं कि हम भगवान को याद करते हैं, पर वास्तव में क्या करते रहते हैं? हाँ, हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, हम भगवान से मांगते ही रहते। हम भगवान को याद नहीं करते हैं, फरियाद ही करते रहते। राजयोग में हम कहते हैं, हमें भगवान से मांगना नहीं है। बताइए क्यों नहीं मांगना है? हाँ, क्यों नहीं मांगना? क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके वारिस है, हमारा बर्थ राइट है भगवान से प्राप्त करना। हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें योग्य लायक बच्चा बनने की जरूरत है। लायक बच्चे को मां बाप खुद ही देते हैं, है कि नहीं ऐसा? हाँ, आप सबका अनुभव क्या है? लायक बच्चे को मां बाप खुद ही सब कुछ देते। कहते हैं ना, भी पेट से निकाल करके भी देते, इतना मां बाप को प्यार होता है। पर लायक बच्चा हमें योग्य ईश्वरीय संतान बनने की आवश्यकता है, मांगने की जरूरत नहीं। जब हम लायक बच्चे बनते हैं, परमात्मा की याद से ही प्राप्ति होती है, मांगने की जरूरत ही नहीं। उनकी स्मृति से ही समर्थी आती। इसलिए राजयोग में हमें भगवान से इवन विनती करने की, रिक्वेस्ट करने की, प्रे करने की भी जरूरत नहीं। हम बड़े दीन हीन लाचार बनकर भगवान से रिक्वेस्ट करते, इतनी शक्ति हमें देना दाता। परमात्मा कहते हैं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं ही दाता है, जो दे ही रहा है, वहां विनती करने की बात ही नहीं है। विनती तो कहां करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट कहां करनी पड़ती है? जहां व्यक्ति ना देता हूं तो हम कहेंगे प्लीज आपकी पेन दीजिए, नोटबुक दीजिए, है ना? जो है ही दाता, दे ही रहा है, जो है ही दयालु कृपालु कल्याणकारी, उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। हमें सोचने की आवश्यकता है कि परमात्मा हमारा पिता है, सागर है, भंडार है, दाता है, वो दे ही रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें ये सोचने की आवश्यकता है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा उनसे योग नहीं है। हमारा उनसे योग नहीं। योग मीन्स कनेक्शन। हमारा परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहा। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में इलेक्ट्रिक पावर चाहिए तो क्या करना होगा? हाँ, कनेक्शन जोड़ना होगा ना। हमें ऑफिशियली कनेक्शन करना होगा ना। परमात्मा लाइट हाउस है, माइट हाउस है, पर हमारे मन और बुद्धि का कनेक्शन नहीं है। खुद को आत्मा समझकर मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, उससे योग कहते हैं। चेक करिए ना, मन और बुद्धि की तार आपकी कहां जुड़ी हुई है? चेक करिए अपने आप को। हमने अपने मन और बुद्धि को कहां जोड़ कर रखा? हम अनेक व्यक्तियों से, वस्तुओं से, साधनों से, आदतों से अटैच हैं। मन बुद्धि हम वहां आसक्त करके बैठे हैं और फिर परमात्मा से मांगते रहते हैं, बाह्य मेहनत करते रहते हैं। हमें मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। योग मीन्स कनेक्शन। परमात्मा के मनन चिंतन स्मृति में स्थित रहना ऑटोमेटिक प्राप्ति है। दूसरा, योग मीन्स रिलेशन। भगवान से संबंध जोड़ना। हमारा परमात्मा से प्रैक्टिकल संबंध नहीं रहा। प्राप्ति तो संबंध से होती है ना। देखो, आपकी लाखों की प्रॉपर्टी है, बच्चा पैदा हुआ, वारिस बन गया, एक रिलेशन से इतनी प्राप्ति। प्राप्ति संबंध से होती। हमारा भगवान से संबंध नहीं रहा है। हम सिर्फ मुख से गाते हैं, वर्णन करते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं? भगवान से हमारे सर्व संबंध है। ये वर्णन करता हुआ कौन सा श्लोक आप बोलते? कौन सा बोलते? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। क्या गाते हैं? त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान से सर्व संबंधों का गायन हम करते। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना। राजयोग में हम ये कहते हैं, हमें सिर्फ मुख से संबंधों का रोज वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रैक्टिकल रिलेशन फॉलो करने की जरूरत है, निभाने की जरूरत है। आप खुद सोचिए कि आपके बच्चे रोज घर में आपके सामने बैठकर रोज गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, ऐसे गाते हैं? हाँ, वर्णन करते हैं? नहीं, बच्चे को निश्चय है ये ही मेरे माँ बाप है। सैकड़ों के बीच छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान कर माँ के पास पहुंच जाता है। उनको निश्चय है यही मेरे माता पिता है। हमें निश्चय करने की जरूरत है, रोज गाने की वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमें निश्चय होना चाहिए परमात्मा ही मुझे आत्मा के असली माता पिता शिक्षक गुरु है। ये शरीर के माँ बाप भाई बहन मित्र संबंधी है, ये एक जन्म के है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप भाई बहन मिलेंगे। ये दुनियावी दैहिक एक जन्म के माता पिता है, मुझ आत्मा के अविनाशी असली माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी परमात्मा है। हमें ये जिगरी निश्चय चाहिए। अगर दिल से ये स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिक हर बात में, हर कार्य में, हर समय, हर स्थान मुझे कौन याद रहेगा, कौन याद आएगा? परमात्मा ही याद आएगा। मेरा निश्चय और स्वीकार है कि वो ही मेरा सब कुछ। राजयोग की विधि है भगवान से संबंध जोड़ो, परमात्मा को सिर्फ मानो नहीं, सही रूप से जानो। सिर्फ जानो नहीं, अब आपने जान लिया है, सिर्फ जानो नहीं, विवेक से पहचानो कि ये ही परमात्मा है। और जान पहचान कर उनसे जीवन जोड़ो, संबंध जोड़ो, स्वतः योग उनसे लग जाएगा। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। संबंध से ऑटोमेटिक प्राप्ति होने लगेगी। और तीसरी बात, हमें भगवान से प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? बाहर जोर से मान लो बारिश आ रही है, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा? हाँ, नहीं भरेगा। समझ गए ना, भगवान से प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? वो तो दे रहा है, निरंतर दे रहा है, वो सागर है। आत्माएं तो नदी नाले टुबके तालाब सरोवर है, परमात्मा तो सागर है, वो दे रहा है अनराधार, कहते ना। पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या हुआ? हाँ बुद्धि उल्टी हो गई, विपरीत हो गई। हमारा भगवान से प्यार नहीं रहा। हमारा जिगरी प्यार परमात्मा से नहीं है, हमारा दिल का समर्पण नहीं, बुद्धि विपरीत हो गई, परमात्मा से प्रीत नहीं रही है, इसलिए प्राप्ति की अनुभूति नहीं रही। अगर भगवान से दिल का सच्चा प्यार है तो कोई मेहनत ही नहीं। प्रभु प्यार ही वो जादू है। आप संकल्प करते हैं और सिद्धि होती है। तो राजयोग की विधि भगवान से संबंध जोड़ना, तो ऑटोमेटिक याद आएगी। राजयोग का आधार भगवान से प्यार करना है। चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। हम भगवान को याद करते रहे हैं पर कोई सिर्फ नियम से याद करते हैं। बस हमारा नियम है, इसलिए नियम से सुबह शाम अपना दीवा कर लेंगे, आरती बोल लेंगे, भजन गा लेंगे, हमारा नियम है बस। न समझ न प्यार, सिर्फ नेमिनाथ। पूछो तो कहेंगे हमारे बाप दादा के जमाने का नियम है, मेरी सास करती थी इसलिए मैं भी करती हूं। कई भगवान को याद करते हैं पर स्वार्थ से याद करते, मतलब से याद करते, है ना अनुभव? परीक्षा आती है, इंटरव्यू होना होता है, कोई अपना प्रेजेंटेशन देना होता है तो भगवान को याद करते हैं कि मेरे को सफलता मिले। स्वार्थ मतलब से याद करते, समाचार पढ़ते हो ना, मेरी फिल्म सफल हो जाए कहाँ कहाँ जाते हैं याद करते, मतलब से। कोई भय से भगवान को याद करते, मुझे कुछ हो न जाए, मेरे काम में विघ्न न आ जाए, मेरे पाप फूट न जाए, भय से याद कर। हम प्यार से याद नहीं करते। प्यार बिगर मन एकाग्र नहीं हो सकता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से चाहिए। इसलिए अगर आप कहते हैं मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन भटक जाता है, मीन्स आपको परमात्मा से प्यार नहीं है, नहीं है महसूस करना। हम ये नहीं कहते हैं आप यहां 3 दिन में योगी हो जाएंगे। योग का सही ज्ञान, योग की सही मेथड बेशक आप यहां से प्राप्त करें, पर योगी बनने के लिए हमें रोज अभ्यास करना होगा। मन बुद्धि में ज्ञान का ग्रीत डालना होगा। भगवान से जिगरी प्यार चाहिए। तो जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका योग लगता जाएगा। इसलिए लास्ट बात ये भी मैं बताना चाहूंगी कि राजयोग इतना सहज है, नेचुरल है, इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर लोग भगवान को याद करते समय आंख बंद करके बैठते हैं। मंदिर में जाते हैं, कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे, पर वहां भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। हमारा कंसेप्ट रॉन्ग है, हमारी मान्यता गलत है। हम ये मानते हैं कि आंख खुली होगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है? हाँ, भटकता है ना। इससे क्या सिद्ध होता है? देखो, आंख खुली है, ये चार दीवार के बीच जो कुछ है वो दिखाई देता है ना। आंख बंद करने के बाद तो मन को तो कोई सीमा नहीं। आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते। इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख नहीं देखती है, मन देखता है। मैं आत्मा देखती हूं, मेरे मन और बुद्धि देखते। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, मन बुद्धि की आंखें घूम रही है, कहां एकाग्रता होगी? बाह्य आंखें खुली है पर मन की आंख परमात्मा से लगी हुई है। तो हजारों सामने बैठे होंगे तो भी कोई याद नहीं आएगा, क्योंकि मन और बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस है, उनसे मेरी लगन लगी हुई है, तो मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा, देखते हुए भी न देखने बरोबर हो जाएगा। और आखिर आंख कब तक, कितना समय आप बंद कर सकेंगे? जबकि हम गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, क्यों नहीं हम अभ्यास ही ऐसे करें, आंखें खुली हों, मन बुद्धि परमात्मा के प्रति एकाग्र हों, ताकि कर्म करते भी हम योगी बन सकें। इसलिए राजयोग में हम आंखें नेचुरल खुली रखते, न बंद करिए ना आंखें फाड़ के बैठी, आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, आंखें नेचुरल खुली रखिए, अटेंशन मन बुद्धि पर रखना है। और लॉजिकली भी आप सोचिए, हमारी आंखें नेचुरल खुली रहती है या बंद रहती है? हाँ, खुली रहती है ना। आंखें बंद कब होती हैं? कब होती है? हाँ, जब नींद आती है। जब नींद आती है तो आंखें बंद होने लगती है ना, वरना हमारी आंखें खुली ही रहती है। आंख खुली रखना नेचुरल है, बंद करना अननेचुरल। तो अननेचुरल मेथड को नहीं अपनाना है। जो नेचुरल है वो इजी है, वो ही परमानेंट हो सकता है। आज मैं आपको योग अभ्यास कराती हूं, आप मेरे मस्तक में देखेंगे। इस अवेयरनेस के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, हम सब मिलकर एक परमात्मा को याद करेंगे। तो ये है राजयोग की विधि। आज का अभ्यास विधि पूर्वक हम करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके ना बैठें। एक दूसरे से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठे। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर मैं शरीर धारण कर कर्म करती हूं। मेरा असली घर शांति धाम है। जहां पिता परमात्मा भी निवास करते हैं। मैं मन की आंख से ज्ञान नेत्र से परम ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा को देख रही हूं। मुझे आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूँ। दर दर भटकती रही हूँ। अब मुझे आपका सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मुझे स्पष्ट है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आपके सही ज्ञान को प्राप्त कर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मेरा जीवन धन्य बन गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव पिता, जो सद्ज्ञान आप देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन शक्तियों के आप अखुट भंडार हैं, मेरे मीठे शिव बाबा, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को, आपके सर्व ईश्वरीय गुणों को आपकी सभी रूहानी शक्तियों को मुझे भी स्वयं में धारण करनी है। मैं आत्मा आपकी संतान, आप शांति के सागर, मास्टर शांति दाता हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति दूत। प्यार के सागर ओ शिव बाबा, आपकी संतान में आत्मा भी प्रेम स्वरूप। आप सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता है। आपकी संतान में आत्मा भी स्वयं एक शक्ति है। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। आपके सर्व खजानों की वारिस, आपके कार्य की जिम्मेवार मैं विशेष महान आत्मा हूँ। ओम शांति।